उन्होंने कहा, मैंने आपसे ना कहा था कि आप मेरे से सब्र नहीं कर सकते? मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना लीजिएगा। अब तो लग रहा है मूसा खुद ही रिजाइन करने वाले हैं कि आई डोंट फील टू मैनी, यानी स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकता, या मैं अपने ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं ले सकता। तो मूसा कह रहे हैं, अब अच्छा बस, अब आपको गलती कर ली ना तो अब मेरा नाम काट दीजिएगा। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उजर मिल गया। फिर वो आगे चले, यहाँ तक एक बस्ती में पहुंचे, वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की मेहमानी से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरी चाहती थी। उस शख्स ने इस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले लेते। उन्होंने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म। तो आकर ये कभी जुमला ना आए हमारी जिंदगी में कि हमारे उस्ताद हमारे मोहसिन हमें कह दें, आज के बाद मेरे साथ आप नहीं चल सकते, सॉरी, एनफ इज एनफ, दैट्स इट, इसके बाद मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा, नहीं, अब आप इसके बाद नहीं जा सकते, क्योंकि आपने खुद कह दिया था, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने खुद ही कह दिया था मुझे छोड़ दीजिएगा, तो वरना तो हो सकता है उस्ताद कभी भी ना उनको छोड़ते। तो क्या पता चला कि बाज़ कुछ लोग खुद अपने खिलाफ खुद हुज्जत कायम कर लेते हैं। खैर, अब मैं आपको इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिस पर आप सब्र ना कर सके। उस कश्ती का मामला यह है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे। मैंने चाहा कि इसको ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर इस कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, यानी जो अच्छी होती। रहा वो लड़का जिस, तो उसके वालदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से इनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि इनका रब इसके बदले इनको ऐसी औलाद अता करे जो इखलाक में भी इससे बेहतर हो और जिससे सिला रहमी भी मुतवक्के हो। और इस दीवार का मामला यह है कि ये दो यतीम लड़कों की है जिस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए खजाना दफन है, और इनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हो जाएं और अपना खजाना निकाल लें। यह आपके रब की रहमत की बिना पर किया गया, और मैंने अपने इख्तियार से कुछ नहीं किया। ये है हकीकत इन बातों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। यहाँ पे ये किस्सा पूरा होता है। इसमें दो तीन चीजें हमारे सामने, आप देखिए कि तीनों वाकयात बड़े अनयूजुअल थे। पहला वाक्य कहता कि एक लड़का सबके बीच में जो खेल रहा है, तो हिजर अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा जो एक नबी भी थे, बनने वाले थे, चले नबी तो बन चुके थे, रसूल बनने वाले थे, उनको पता था कि तौरात में भी कत्ल की सजा कत्ल है। तो उन्होंने फौरन देखा एक गलत काम होते थे कि चुप ना रहे। यहां से आपको मूसा अलैहिस्सलाम का दाईला दीन होना और बुराई को देखकर खामोश ना रहना दिखेगा कि कभी भी एक साहिब ईमान शख्स दूसरों पे ज्यादती होता देखकर कॉम्प्रोमाइजिंग होकर आराम से नहीं बैठता। लेकिन असल में अल्लाह सुब्हानहू मूसा को दिखा रहे थे कि इन कामों के पीछे हिकमत क्या है। वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए बदनामी का जरिया बनने वाला था, तो इसमें अमल की बात है। अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की डेथ हो जाए बचपन में जवानी में, तो यही सोच लीजिए कि इसकी मौत में ही फायदा था। आप देखिए कि बास दफा छोटा बच्चा ही बॉर्ड हो जाता है माँ से, कैसे आप सोचें कि ये खैर है? आज एक चंद दिन का बच्चा गया या माँ के पेट का चला गया, अगर ये 12 साल का होके होता तो कैसा लगता? जवानी में जाता, चलो अल्लाह अभी दिल में इतनी मोहब्बत नहीं भी डली थी तूने ले लिया, आपको सुकून मिल जाएगा। आप कहते हैं अच्छा 10 11 12 साल का बच्चा दुनिया से चला गया, बड़ा दुख हो रहा है, हाँ इतनी तकलीफ नहीं, आप शुक्र कीजिए 12 13 का होके गया, अपनी शादी वाले दिन 25 साल का जवान नहीं फौत हो गया, फिर आपको सुकून मिलेगा। 25 साल का होके अल्लाह ना करे कोई शादी के दिन किसी की डेथ होती है तो आप रोते नहीं, रोइए, क्या पता कल वो अपने पीछे 4 बेटियां छोड़ के बीवी छोड़ के चला जाता, फिर आप इस पे रोती कि हाय देखो बच्चियां छोड़ गया, माँ बीवी छोड़ गया, अब चला गया। तो याद रखिए हमेशा बी पॉजिटिव। ये वैसे एक ब्लड ग्रुप है और मेरा ना बी पॉजिटिव होता है जो सबको लगता है, या वो पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव सबको लगता है, लेकिन बी पॉजिटिव इज ओ पॉजिटिव। हर हाल में खुश रहने वाला बंदा वही होता है जो हमेशा आजमाइशों के पीछे देखे, इधर के इसके बैक पे क्या है, इसमें अल्लाह ने क्या खैर रखी हुई है। और जिसको नहीं खुश होना, वल्ला ही सोने का लुकमा आप उसके मुंह में डालें वो कभी खुश नहीं होगा, वो उस पर भी नाराज होगा कि ये सोने का क्यों, ये चांदी का क्यों नहीं है। तो लिहाजा इस वाक्य की हिकमत समझ आ गई। दूसरा वाक्य जो हमने सुना कश्ती का, कश्ती उन्होंने क्यों तोड़ी? क्योंकि दूसरी तरफ जो बादशाह था वो जालिम था, और वो जो अच्छी अच्छी कश्तियां थी उनको ले लेता था, और थोड़ी थोड़ी डिफेक्टेड कश्तियां थी उनको छोड़ता है। अब खिजर अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती को थोड़ा सा डैमेज किया। किस तरह किया? कि चलो कश्ती बच जाए, यहां बहुत गहरा नुकता है हमारे लिए जिंदगी के असूल का, कि कश्ती बच जाए, चलो जाहरी टिप टॉप नहीं होगी, उसका मुआज तो चलता रहेगा। तो वही हुआ, जब वो कश्ती थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी देखी तो बादशाह ने जाने दी, गरीब बच्चों की कश्ती बच गई। इसमें क्या पता चलता है कि बादशाह वहां बहुत ग्लैमरी चीजें यूज करते हैं, पंप एंड शो, नजर लग जाती है, इंसान चोरों डाकों की नजर में आ जाता है। लोगों के हसद का शिकार हो जाता है तो फिर वो चीज छिन जाती है। तो उससे बेहतर है कि इंसान की जरूरियात पूरी होती रहे, बहुत ज्यादा इस तरह की मामला ना हो। तीसरी चीज दीवार की थी। दीवार वो उन लोगों ने तो मैं खाना भी नहीं खिलाया, और उनके जो उस्ताद थे उन्होंने उसकी दीवार को बगैर किसी मुआवजे के निकाल लगा दिया, तो इससे बेलॉस होना भी दिखा। लेकिन असल बात क्या थी कि उस दीवार के पीछे माँ बाप की नेकी थी। याद रखिए कि रिस्क हलाल हो और माँ बाप नेक हो, इसका असर आने वाली नस्ल पर पड़ता है। माँ बाप चाहते थे कि बच्चों के जवान होने तक ये सारा माल जो है ये नीचे ही रहे, लेकिन दीवार अपने वक्त से जरा जल्दी गिरने लगी। अल्लाह ने सबब पैदा करके यतीमों का काम करा दिया। तो मेरे और आपके लिए इन सारी चीजों में आज एज उम्मत मुस्लिमा, उम्मत वसत क्या है कि हमें हमेशा अल्लाह के फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम खुद देखें कि अल्लाह ताला ने जो मामला रखा है उसमें खैर क्या है। जब आप किसी बड़ी से बड़ी चीज को सुने, मसलन इस्लाम के खिलाफ बात हुई, नबी के खिलाफ बात हुई, किसी को कुछ कहा, तो फौरन इस वाक्य को सोचें कि अब इसके पीछे खैर क्या है। जितना लोगों ने शर फैलाना चाहा उतना इस्लाम फैल गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आजमाइशों की हकीकत पे ले आए। अब आगे ये जो 16th पारा शुरू हुआ है अभी, इसकी भी थोड़ी सी झलकियां आपको दिखाऊं कि इस पूरे पारे का थीम आजमाइशों की हकीकत है। किस किस की आजमाइश है? अभी हमने देख ली मूसा की आजमाइश, यानी आजमाइशों की हकीकत। असबाब के पर्दे में मींस के पीछे झांक के देखें तो आजमाइशें रहमत लगने लगती हैं। मसलन मूसा की आजमाइश क्या थी? इल्म के रास्ते की, आयत 60 से 82 में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद अब जुलकरनैन की आजमाइश का किस्सा आएगा, जो इक्तदार की आजमाइश थी, और इसमें इंशाल्लाह हमें मुस्लिम हुक्मरानों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी गाइडलाइन मिल जाएगी, आयत 83 से 98 में। इसके फौरन बाद सूरत मरियम शुरू होगी, तो हजरत जकरिया की आजमाइश आयत नंबर 2 में उसका जिक्र है। बुढ़ापे तक अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा। फिर आयत 16 में हजरत मरियम की आजमाइश का जिक्र शुरू होगा कि कैसे कि कुंवारी बच्ची को अल्लाह ताला ने बच्चे की आजमाइश में डाल दिया। फिर आयत 30 से 34 में हजरत ईसा की आजमाइश का जिक्र है कि अल्लाह ने कैसे उनको आजमा लिया, बचपन में ही शुरू होगी उनकी आजमाइशें। और उसके बाद आयत 41 से 50 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का जिक्र है कि कैसे अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को डाला। उसके बाद आयत 65 से 75 में सूरत मरियम में इंसान की आजमाइश है कि दुनिया की चमक दमक वाज दफा उसके लिए इतना बड़ा फितना बन जाती है, कितने प्यारे रब को नाराज करके वो इन चीजों को हराम से लेने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हो जाएंगी। पूरी सूरत तौहा ही पढ़ेंगे तो आपको ऐसे याद लगेगा कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आए हैं। फिर फिरौन की आजमाइश का जिक्र आएगा कि कैसे बाप दादा का नाम लेकर उसने अपने आप को पीछे रखा, और आयत 65 से 75 होगी। फिर आगे आप जाएंगे तो देखेंगे जादूगरों की आजमाइश का जिक्र आएगा कि ईमान की आजमाइश उनकी हो गई, आयत 65 से 75 उनका जिक्र है। फिर सामरी एक शख्स था जिसने बनी इसराइल को बहकाया था, उसकी आजमाइश है आयत 95 से 97 में। और उसके बाद आप देखेंगे आदम और इबलीस की आजमाइश है, आयत 115 तो आहा से लेके 123 है। और उसके बाद अल्लाह की याद से राज करने वाला, व मनार अदान जिक्री फाइन लहु मई शतन दन का, 124 से 127 में। अभी आप सब ना भी नोट कर सके हो, लेकिन अब आपको ये अंदाजा होने लगा है कि इस पूरे पारे को हम किस नैरियों में पढ़ेंगे। आजमाइशों की हकीकत को अगर असबाब के पर्दे में जान लेंगे, कभी आपके चेहरे पे दुख तकलीफ का नाम नहीं होगा, आपका दिल कभी भी बोझल नहीं होगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपका इस दुनिया से दिल उचाट नहीं होगा। मुसीबतों तकलीफों के बीच में बैठे हुए भी आपका दिल चेहरा दिमाग मुतमईन और मसरूर होगा। आइए अब देखते हैं हम हजरत जुलकरनैन का किस्सा, ये कौन थे? देखिए हुक्मरान 3 किस्म के होते हैं, एक होते हैं जालिम हुक्मरान, दूसरे होते हैं आदिल हुक्मरान, और तीसरे होते हैं मोहसिन हुक्मरान। जालिम हुक्मरान तो अल्लाह की पकड़ में जाएंगे, आदिल हुक्मरानों के लिए बहुत नवीदें हैं, लेकिन जो मोहसिन हुक्मरान होते हैं वो असल में वो चीदा किरदार हैं दुनिया के, जिनको आज एक को तो हजरत उमर के नाम पे लोग जानते हैं। तो जुलकरनैन एक ऐसा शख्स था जिसको अल्लाह ने दुनिया की भी दौलत दी थी और दीन की दौलत भी दी थी। आप कह लीजिए, मैं आपको अगर बड़ी बात ना कह दूं तो जुलकरनैन की सूरत में अल्लाह ने आज उम्मत मुस्लिमा को इस दुनिया के कंट्रोल को चलाने वाला एक आइडियल हुक्मरान बनाया। हम मुसलमान चाहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, चाहते हैं ना लोग अल्लाह के दीन से जुड़े, लोग कत्ल गरारत और गंदगी छोड़ दें, चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि दुनिया से करप्शन का खात्मा हो, बेदीनी चली जाए, जो भी बेसकूनियां आज दिखती हैं, तो उसके लिए जुलकरनैन एक किरदार है। आज उम्मते मुस्लिमा अगर ये किरदार अदा करे, जहां जहां कोई लीडरशिप पे है, अगर वो लोगों को देने वाला बन जाए, हर कीमत में लोगों की खिदमत करने वाला बन जाए, अपने जाती फायदों से ज्यादा लोगों के फायदों पे, आप देखिए लोग आपको फोन करके, आपको इनविटेशंस दे के अपने अपने मुल्कों में बुलाएंगे। और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते वक्त दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह उम्मते मुस्लिमा को अब ऐसे किरदार दे कि जो दीन और दुनिया की दौलत से लैस हो। अब कहेंगे हम हुक्मरान तो नहीं है, हुकूमत हमें अल्लाह ने नहीं दी, लेकिन आप नोट करेंगे कि जिन मीन्स और असबाब की बात जहाँ जुलकरनैन के नाते से, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इंडिविजुअली मुसलमानों को बहुत मीन्स दिए हैं। पैसा, माल, दौलत, ताकत, इज्जत बहुत है मुआशरों में। अगर हम अपने अपने मीन्स को अल्लाह के रास्ते में लगाने की नीयत कर लें, तो आप देखिए कि कम अज कम 50-60% काम तो उम्मत मुस्लिमा की बहाली का हो जाएगा। बाकी भी जब ये हम करते हैं, जब लोग इस लेवल पे अल्लाह के दीन के लिए लगाने वाले बन जाते हैं, अल्लाह तोहफे में कोई ना कोई एक अच्छा हुक्मरान भेज ही देता है। तो हुक्मरानों को बुरा कहने की बजाय हमें अपनी नेमतों को, अपनी चीजों को अल्लाह के रास्ते में लगाना है इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं कौन थे वो। ए नबी, लोग आपसे जुलकरनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहिए मैं इसका कुछ हाल आपको सुनाता हूँ। हमने इसको जमीन में इक्तदार अता कर रखा था और उन्हें हर किस्म के असबाब और वसाइल बख्शे थे। क्या पता चला कि दीन की और दुनिया की दौलत सारी एक जगह जमा हो सकती है? ये चीज नहीं है कि इस्लाम हमें दुनिया की नेमतें हासिल करने से रोकता है। कैसे उसने अपने मीन्स को और अपनी नेमतों को अल्लाह के रास्ते में लगाया? सबसे पहले उन्होंने मगरिब की तरफ एक मुहिम का सामान तैयार किया, हत्ता कि जब सूरज के डूबने की हद तक पहुंच गए, तो उन्होंने सूरज को काले पानी में डूबते देखा और वहां एक ऐसी कौम मिली। हमने कहा है ज़ुल्क़रनैन, तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि इनको तकलीफ पहुंचाए, और ये भी कि इनके सख्त नए रवैये अख्तियार करें। यानी जब कोई हुक्मरान किसी मुल्क को फतह कर लेता है, तो दो ही रवैये होते हैं ना, या वहां जाके जुल्म करे या इंसाफ करे। तो कहा कि आप जो भी करें। उन्होंने कहा इनमें से जो जुल्म करेगा हम इसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटा जाएगा और वो इसे और सख्त अजाब देगा, और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम इनको नरम अहकाम देंगे। हाईलाइट कीजिए, मैनेजमेंट का द बेस्ट रूल है ये, दी बेस्ट रूल, कि सबको एक लाठी से नहीं हांकेंगे। जो काम करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको स्टूडेंट ऑफ द वीक भी कह देंगे, हम उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास भी कह देंगे, और बेस्ट पर्सन ऑफ बेस्ट पेरेंट का लकब भी दे देंगे। लेकिन जो रूल्स नहीं तोड़ेगा उसके से हम सख्ती करेंगे। देखिए जब हम सबको एक लाठी में हांकते हैं ना, जो रूल तोड़ दे उनको भी कहते हैं इस ओके, क्योंकि ये नाराज होके चले गए तो फिर तो हमारे मस्जिद में लोग आएंगे ही नहीं, और रूल्स मानने वालों को भी एक ही जगह रखें तो एंड पे आपके पास कौन लोग रह जाएंगे आपको पता? सिर्फ रूल्स तोड़ने वाले, क्योंकि जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया आपने उनको और ना फॉलो करने वालों को एक ही लाठी में डाल दिया, वो लोग बस वहां से चले जाएंगे। फिर आप जू जहां करते हुए लोगों की जरा वक्त सेट करिए। जो लोगों से डर के अपने रूल्स तोड़ता है ना, याद रखिए वो ना तो लोगों को खुश करता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि क्रीम क्वालिटी के लोग उससे निकल जाते हैं। थोड़े लोग हों, रूल्स को मानने वाले हों, कमिटेड हों, ये बहुत बड़ी भीड़ से बहुत बेहतर है। वजह क्या है कि उनसे आगे कुछ निकलेगा। जो आज सुनने और बात को मानने के दौरान रूल्स नहीं फॉलो करे, कल वो आपकी अच्छी टीम कहां बनेंगे? वो तो हमेशा लोगों को सहूलत ही देते रहेंगे और रूल्स तोड़ते रहेंगे, कभी एक वजह से कभी एक से। तो यहाँ ज़ुल्क़रनैन की रोशनी में ये गहरा असूल है जिसपे अमल करने की आज उम्मत मुस्लिमा को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तुम बासबलम, फिर उन्होंने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान नहीं किया गया। ये हाल था इनका और ज़ुल्क़रनैन के पास, जो कुछ था इसे हम जानते थे। फिर इसके बाद एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो इसे इनके पास एक ऐसी कौम मिली जो मुश्किल से ही बात समझती थी। इन लोगों ने कहा ज़ुल्क़रनैन, जाजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम का दे दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक बन तामीर करा दे? उन्होंने कहा जो कुछ मुझे मेरे रब ने दे रखा वो बहुत है, बस तुम मेहनत के साथ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को इसने पाट दिया, तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, हत्ता कि जब यह आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुख कर दी गई, तो उसने कहा लाओ मैं इस पर पिघला हुआ तांबा ले लूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज माजूज जिस पर चढ़कर भी ना सकते थे, इसमें सुराख करना इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। ज़ुल्करनैन ने कहा, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पेबंदे खाक कर देगा, यानी मट्टी में मिला देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। या आप देखिए कि इधर भी हमें तीन मुख्तलिफ वाक्यात मिले। पहली चीज़ तो इसमें हमारे सीखने की क्या है कि इस्लाम दुनिया में मकसद के साथ घूमने से मना नहीं करता। बस लोग पर्पसलेसली कहते हैं हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, हम उधर घूमेंगे सैर करेंगे, फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी सी नई चीजें देख लेंगे, तो इबरत की नजर हो। दूसरी बात, दूसरों को फायदा देना। जुलकर नहीं, जहां भी गए, फिर आपने देखा सूरज निकलने की जगह पे गए ईस्ट में टोटल, फिर डूबने की जगह में गए वेस्ट में, फिर शिमाल में गए। ऐसे लगता है कि नॉर्वे से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर डिफरेंट इलाके को इन्होंने घूमा, और जहां जाकर जो काम किया वो दूसरे से फर्क था, मल्टी फंक्शनल थे। एक मोमिन जो है वो हमेशा लोगों को फायदा देता है, कभी इल्म के साथ, कभी दुनिया के साथ, कभी खाना पका के, कभी स्माइल के साथ, कभी उसके घर की सफाई करके। तो दीन सिर्फ कुरान क्लास की बैंदर बैठकर टेबल चेयर सजा के पढ़ाने का नाम नहीं है। आप लोगों की नीड ऑफ द आवर देखें, किसको किस वक्त आपसे तसल्ली चाहिए, किस वक्त किसी को आपसे क्या चाहिए, वो काम करना। फिर एक और चीज इसमें देखा कि ज़ुल्करनैन ने इन सब चीजों पर कोई अवार्ड नहीं चाहा, इतनी बड़ी दीवार बना दी, इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया उनसे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीचे अपना नाम लिखा दे। आज कोई किसी हॉस्पिटल में एक संगे बुनियाद भी रखे तो वहां नाम लिखा जाता है, जी ये इसकी संगे बुनियाद उन्होंने रखा था, ये डिपार्टमेंट उनके नाम का, ये फला उसके नाम पे, ये लैब उन्होंने बनाई। तो इन कामों को अल्लाह के लिए करना ही फायदा है। इसलिए अब आप देखेंगे कि अब आखिरी आयतें जो सूरत की चल रही है, इसमें पूरी सूरत का थीम यही बताया गया कि जब एक इंसान अपनी जात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है तो लोगों को नफा होता है। जहां इदारे प्यारे हो जाएं, जहां अपने ओहदे प्यारे हो जाएं, जहां खुद को बड़ा समझना हो जाए, वहां फिर दीन नहीं पनपता। इसीलिए अल्लाह ताला क्यामत का एक मंजर हमारे आंखों के सामने लाकर क्या फरमाते हैं, व तरक ना बादहुम यौम इजी यमूज फी बाद व नुफिख फिस्सूर व नुफिख फिस्सूरी फजमा नाहुम जमा। और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो, और सूर फूका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। सोचिए ऐसे फौजों की फौजें जमा हो रहेंगी क्यामत के दिन, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, इन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ना थे। हाईलाइट करेंगे, अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फी ग़िताएन ज़िक्री वकानु ला यस्ततीऊना समअ। दो बातें, ना सुनना चाहते थे ना देखना चाहते थे, अल्लाह ने ऐसे लोगों को काफिर कहा। आप थोड़ी देर के लिए अपने कानों को भी बंद करें और आंखों के आगे भी हाथ रख लें तो आपको अपना दम घुटता हुआ दिखेगा। काफिर की जिंदगी ऐसी ही जिंदगी होती है, इनकार करने वाले की।